राइट। और मगर वही है कि 80 लोग जो हैं अभी भी कहा जा रहा है कि वो इसमें ट्रैप्ड हैं, और पता नहीं अब कितने बचेंगे, क्या होएगा, क्योंकि रबल में से निकालना भी तो कितना मुश्किल है ना। तो ये गली भी देखें ना, अब छोटी सी ये गली है, इसमें वो अब क्रेन कैसे लाएंगे, कैसे वो ये हटाएगी सारी, क्या करेंगे, बहरहाल एनीवेज अल्लाह बचाए। तो ये भी एक अफसोस का जो है वाकया। अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर जो है बड़ी ऑस्ट्रेलिया के अंदर चेंजेस आए, जो थे पुराने प्राइम मिनिस्टर वो चले गए, और बड़े अरसे के बाद जो है लेबर पार्टी जीती है, वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे जो थे मिस्टर स्कॉट मॉरिसन, वो हार गई उनकी पार्टी। तो नए प्राइम मिनिस्टर की फटाफट उनको जो है स्वेयरिंग दी गई, क्योंकि वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने क्वाड की मीटिंग में जाना है, वरना अभी एक हफ्ता ठहर के इनकी स्वेयरिंग इन हो सकती थी, लेकिन इन्होंने फटाफट जैसे ही लेबर पार्टी जीती जो रिजल्ट्स आए उनकी बेसिस पे इनकी स्वेयरिंग इन की, और ये जो हैं अब पहुंच गए हैं वहां पे टोक्यो में, जो है अब जाएंगे, कल जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहां पे, और वहां पे इनकी क्वाड की मीटिंग जो है वो शुरू होगी। अच्छा, इनके साथ जो है इनके बाकी के भी जो काफी जो मेंबर्स जो थे जो जीते थे उनके भी अनाउंसमेंट्स इन्होंने फौरन ही कर दिए हैं। तो तीन की मिनिस्टर्स जो हैं उनका अनाउंस किया गया, पेनी वोंग जो हैं उनको फॉरेन अफेयर्स दी गई है मिनिस्ट्री, जिम चार्मर्स को दी गई है ट्रेजरी, और केटी कैलेंगर को फाइनेंस दिया गया है। तो ये इन्होंने बड़ी जो यहां पे जो है खुशी मनाई है, क्योंकि तकरीबन जो है वो 20 ईयर्स के बाद की स्ट्रगल के बाद, और जो है ये 9 साल तो ये लोग बेचारे ऑपोजिशन में ही बैठे रहे हैं, और काफी इनकी स्ट्रगल थी। तो ये जो नए लीडर अब बने ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, इनका नाम है एंथनी एल्बिनिस। तो ये अब 31st प्राइम मिनिस्टर हैं, और लोगों ने बड़ी खुशी का इसमें इजहार किया, क्योंकि बहुत अरसे से इनकी भी बहुत लंबी स्ट्रगल थी।
Exactly.
तो उसके बाद जो है इनको अब ये पोजीशन मिली है, तो जी हम भी इनको मुबारकबाद देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है और उसकी हम आपको खबर अभी देंगे।
यू आर लिस्निंग टू WTUR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
हाँ जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है और उसमें कुछ जो हैं लीडर्स उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं। एक तो जो यूक्रेन के ही प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक दफा फिर से कहा है कि रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगाने की जरूरत है। ये वाये वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये उससे समिट से बात कर रहे थे, और इन्होंने कहा है जी, और ये जो एक बात इन्होंने की उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई, इन्होंने जितने भी वहां पर वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए थे उनको कहा कि यूक्रेन बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके बिजनेसमैन जो है उनको आके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहले आप पीस तो लेकर आओ वहां से तो फिर आएंगे। भरल जी इन्होंने कहा है सारी दुनिया को कि भई आप लेकर आए इधर सारे अपने बिजनेसमैन जो हैं, क्योंकि यहां पे जो है हमारा बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़ा हम जो है फ्रेंडली लोग हैं, हसीन भी बने हैं, तो आप जो है यहां पे आके हमारे साथ मरो हैं जी। नहीं नहीं, तो इन्होंने कहा जी ये आप इसमें आके इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और हमें मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप सैंक्शंस और ज्यादा सख्त करें। भाई और क्या सख्त करें यार, इतना कुछ तो कर दिया रशिया के साथ, तो और ज्यादा क्या सख्त करें। वो कहते हैं जी ये जो करप्शन है इनके अंदर और ये जो पार्टी जो है इनकी पुडन साहब की, उनको सबक सिखाने के लिए ये जरूरी है कि आप इनके ऊपर और सैंक्शन लगाएं। अच्छा जी पाए, चलो ठीक है, आप सारे जो है ना बेचारे इन सबको उल्टा लटकाएंगे हैं जी, एक वो भी एक टांग बांध के ना उसके साथ जो है वो दरख्त के साथ लटका देंगे। ज़ेलेंस्की पहन तुम खुश हो तो ये होने लगा जी वहां पे, तो ये आज इन्होंने फिर से वहां पे कहा। लेकिन इसके ऊपर एक जो और बहुत बड़ा आज बयान आया है वो अमीर ऑफ कतर जो है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है जी के ठीक है, हमें बड़ा अफसोस है और हमारा दिल भी बड़ा दुख रहा है जो कुछ यहां पे यूक्रेन में हो रहा है, ये जो चीजें हैं कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जानी चाहिए, पीस और डायलॉग से होनी चाहिए, लेकिन मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहा हूं, यानी कि कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, कहा नहीं है इन्होंने, लेकिन कहने की जो मेरी तरफ से मतलब था, जो इनका जो मैं समझी हूं वो ये है कि पायन सिर्फ एक मसला नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे मसले हैं जिसकी के अटेंशन की जरूरत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को तरफ देखने की जरूरत है। तो अमीर जो है ये शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो है इन्होंने कहा कि हमारे इलाके में जो पैलेस्टाइन का मसला है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये इसको फॉरेन जो है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक जो है वूंड बनता जा रहा है, ये एक वूंड है यहां पे अरब वर्ल्ड में जो कि जिससे जो रिश्ता ही चला जा रहा है, जिसमें से खून जो है वो रिश्ता जा रहा है, और ये कॉन्स्टेंटली इसराइल की जो हेजेमनी है और जो उसका जुल्म है पैलेस्टीनियंस के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है, और ये अपना जो है असर कॉन्स्टेंटली इसराइल बढ़ाता जा रहा है और डेली बेसिस पे वहां पे लोग मर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी जो रिसेंटली ये जो मरी है जर्नलिस्ट पैलेस्टीनियन शिरीन अबू अखलक, उसकी तरह के और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट मरे हैं वहां पे। तो ये अल जजीरा की थी, इसकी इसको मारा है इजरायली फोर्सेस ने। इसके अलावा और भी जो हैं 7 जो जर्नलिस्ट, जैसे कि यूक्रेन में जिनकी डेथ हुई थी और आपने उसके ऊपर बड़ी आवाज उठाई थी, तो सिंस 2000 यहां पे पैलेस्टाइन के अंदर 18 जर्नलिस्ट उसकी तरह के मर चुके हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस में और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आती हैं। तो आप जरा थोड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले हो, जरा उस तरफ भी देखो है जी, और थोड़ा जी आगे और भी जाओ है जी।
इनका बिकॉज ही इज हेल्पिंग यूरोप,
यस,
तो इनका वेट है, यू नो, पीपल विल लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग।
यस दैट्स राइट, और जाहिर है अमीर है ये तो इनका सुनेंगे। तो ये जी आज इन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा जी कि और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इराक सीरिया यमन की तरफ भी हैं, तो वहां पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी तरफ भी जरा पीआर से देखो है जी। तो आप देखेंगे क्या करते हैं। अच्छा जी, बाइडन साहब की ये स्टोरी तो आपको सुनाई है अभी आरफाबाजी ने, कि उन्होंने आज कहा है क्वाड की जो मीटिंग हो रही थी उसके अंदर कि हम अगर चाइना ने कोई भी कदम उठाया तो पायान हम आपके पीछे खड़े हैं, ताइवान को कहा इन्होंने है जी, हम आपके पीछे खड़े हैं, लड़ो मरो हम आपके पीछे खड़े हैं, बिल्कुल ये हम होने नहीं देंगे जो चाइना कर रहा है। देखो पायन, देखो बाइडन साहब तुहाडे नाल भी सानू बड़ा प्यार है, लेकिन तुसी ये की कर रहे हो, आंदे हो सार लड़ाइयां मार कुटाइयां तुसी दुनिया भी शुरू कर देती हैं। ट्रंप साहब ने कहा जी मैं नहीं लड़ना, तुसी कह रहे हो नहीं असी खेडना ही नहीं लड़े बगैर है जी, व्हाट इज दिस। अच्छा जी, तो इन्होंने आज ये फिर कहा उन्होंने, अच्छा इसमें ना जरा थोड़ा सा शिफ्ट समझा जा रहा है ये इसकी वाशिंगटन की जो पॉलिसी थी, क्योंकि पहले ये कहते थे हम हेल्प देंगे लेकिन हम नहीं लड़ेंगे, राइट right? जैसे पाकिस्तान को कहते थे हेल्प देंगे मगर लड़ो तुम लोग मरो तुम लोग जो है ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अब ये वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर चाइना ने अटैक किया तो फिर हम भी फोर्सफुली हम भी चाइना के ऊपर अटैक करेंगे अगर उन्होंने ऐसे किया। अच्छा पायन, आपको शायद पता नहीं है, आपको याद करा दें हम कि चाइना ने हमेशा कहा है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। और अच्छा अब बाइडन साहब ने उधर कहा है जब क्वाड की मीटिंग के लिए ये वहां पे पहुंचे हैं, इन्होंने कहा जी जापान में कि हम ये समझते हैं और हम बिलीव करते हैं वन चाइना पॉलिसी पे, लेकिन ताइवान के ऊपर यानी हम नहीं वन चाइना पॉलिसी इसकी चलने देंगे। भी बहन ये की गल है, या खेलो या ना खेलो है, कोई एक गल करो ना। कहता नहीं हम बिलीव करते हैं कि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उस पे, लेकिन अगर ये जो कर रहा है ये बड़ा डेंजरस फ्लर्ट है इसका ताइवान के लिए, तो हम ये होने नहीं देंगे इसका। और बेसिकली तो मकसद जो है इनके इस दौरे का वो यही है कि ये सारे कंट्रीज जो क्वाड के हैं, बल्कि और ज्यादा कंट्रीज को जैसे कि साउथ कोरिया वगैरह है, उनको भी इसके अंदर अलायंस के अंदर जो है वो शामिल किया जाए और इसकी रीच जो है वो बढ़ाई जाए। तो जैसे कि अभी इनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो वियतनाम में गए हुए थे और वो वहां पे सिंगापुर और वो सारे इलाकों में, तो ये इनका मकसद यही है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि भाई आप क्वाड का हिस्सा बनो ताकि चाइना को हम जो है दीवार से लगा सकें। तो पहन चाइना तो नहीं आपको ये करने देगा है जी, व्हाट इज दिस, चाइना कोई छोटी ताकत है, हैं दुनिया की सबसे बड़ी दो इकोनॉमीज कौन सी है, एक आपकी है लेकिन आपका तो सारा कर्जा लिया आपने चाइना से, तो फिर चाइना ही बड़ी हुई ना, तो फिर आप चाइना को आंखें दिखा रहे हैं, ये कैसे चलेगा।
मगर ये कि
अमेरिका और चाइना दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है,
अमेरिका से पंगा लेने से पहले चाइना 10 दफा सोचेगा, 10 दफा नहीं बल्कि 100 दफा सोचेगा।
अच्छा, तो यानी जो है इस वजह से अमेरिका पंगे लेता रहेगा चाइना से
दुनिया में कहीं पर भी, मगर हाँ। ये कि जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका से पंगा किसी ने लिया है
तो कभी तो नंगा हो गया,
कभी सक्षम नहीं होता। तो बेहतर यही है कि
चाइना वाले चुप करके बैठो,
चुप करके बैठो और लिसन टू व्हाट अमेरिका इज सेइंग। अगर आपने पंगा लिया तो इसका फिर बाद में नुकसान जो है ना, देखिए रशिया तो इतना कोई वो दुनिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था, यस ऑयल एंड गैस वगैरह दे रहा था, मगर उसकी इकोनॉमी दुनिया को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसका वो ये नहीं था कि भाई सारे गाड़ियों के पार्ट्स मेरे पास से आ रहे हैं, दुनिया की हर चीज चाहे सुई से लेके बड़े से बड़ी चीजों तक वो सप्लायर है चाइना। अगर उसने लिया सबसे पहले तो उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, नंबर वन उसकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। दूसरा ये कि इनके सारे अमेरिका के पूरे बेड़े उधर हैं, उसी सी में खड़े हुए हैं,
साउथ चाइना,
या साउथ चाइना सी में। तो यस, यू बेटर थिंक नॉट 10 times बट 100 times बिफोर यू मेक अ मूव, एंड इफ यू मेक अ मूव दैट विल बी अ मिस्टेक फॉर यू।
माजिद भाई लिफाफा आज कहां से है, अंकल सैम ने भेजा?
नो, बट दैट इज सी रशिया, टेका लोग रशिया कितने हो गए, कितने महीने हो गए,
88 days हो गए हैं। रशिया के स्टॉक्स आज बहुत ऊपर चले गए हैं क्योंकि रशिया ने अब ट्रेड रूबल में शुरू कर दी है जनाब।
नहीं कितने ओ कुछ भी करता रहा है वो, कितने महीने हो गए, इतनी छोटी सी जगह यूक्रेन को नहीं पकड़ सके, तुम उसके बराबर में खड़े हो, उसके एकदम बराबर में खड़े हो तुम और उसको यूक्रेन का क्या,
लेकिन इन्होंने बहुत इक्विपमेंट दे दिया ना, बहुत ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट
वो तो बाद में दिया है, वो तो अब दे रहा है ना,
हाँ
तो अब दे रहे हैं ना, उससे पहले तो उनके
बहुत सारे एरिया के ऊपर तो वो कब्जा कर बैठे हैं,
उनके उनके खुद के लोग जो हैं वो हाथ में गन लिए हुए, दे आर द वंस यू नो, हालांकि उसके फौज की तादाद कुछ नहीं थी, मगर जब हर आदमी गन लेके खड़ा हो गया सामने तो देन वो जो जज्बा है ना वो उसको आप नहीं तोड़ सकते।
लेकिन माजिद भाई अभी तक रशिया ने वैसा ऑफेंसिव दिखाया भी नहीं है, देखे ना आप ये इन ऑल ऑनेस्टी उसने अभी ऐसा ऑफेंसिव
और कितने मारेगा वो,
हाँ लेकिन देखे ना अभी अभी भी उसने न्यूक्लियर ऑप्शन यूज नहीं की है,
न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करेगा तो दैट्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर,
हाँ हाँ नहीं यूज की ना,
तो उसको पता है कि वो जिस दिन उसने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया दैट बी थर्ड वर्ल्ड वॉर एंड देन द होल वर्ल्ड इज गोना बी अगेंस्ट हिम एंड फिर पूरी दुनिया की फोर्स जाके उससे, अभी तो सिर्फ यूक्रेन की फोर्स से लड़ रहे हो ना, उसके बाद पूरी दुनिया की फोर्स से लड़ना पड़ेगा तुमको, सो दे इज नॉट गोना मेक दैट मिस्टेक, इज नॉट गोना मेक दैट मिस्टेक एंड चाइना को ये दिखा दिया गया है कि देखो रशिया को देख लो, इतनी वो कहते थे कि हम अमेरिका के टक्कर में हैं और एक छोटे से मुल्क को जो है अमेरिका गया था शॉक एंड ऑ एंड वो कहते थे कि उसकी इराक की फोर्सेज जो है बहुत जबरदस्त फोर्सेज है, ये विद इन 24 आवर्स There was no Iraq left there. हाँ
मजद भाई बट आप पुरानी हिस्ट्री अमरीका की भूल गए हैं ना, वियतनाम के अंदर तो इनको डिफीट हुई ना, इन्होंने माना नहीं, वहां से तो इनको छोटा सा वो टिड्डी जितना
लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म
इसके अलावा अफगानिस्तान अफगानिस्तान
उस जमाने के
अच्छा उस जमाने में अफगानिस्तान की तो अभी हुई है ना, अभी हुई है, वहां से भी ये मान नहीं रहे हैं कि इनको डिफीट हुआ है, एक छोटा सा मुल्क, एक इम्प्रोवाइज्ड किस्म का मुल्क, एक जो है बिल्कुल ही वाइल्ड सा कंट्री और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या कर सके फिर 20 साल।
अफगानिस्तान इज अ डिफरेंट थिंग, अफगानिस्तान में पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई भी बाहर की फौज जो है वो आके अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर सकी,
हाँ, तो फिर ये हिस्ट्री इनको नहीं पता थी अमेरिकन्स को,
मगर ये तो एक था ना, ये तो एक जगह की बात कर रही है ना अफगानिस्तान, क्योंकि वो अफगानिस्तान की जैसा कंट्री दुनिया में और है नहीं कोई, सारा हिली इलाका है,
डिफिकल्ट ट्रेन है
वो, तो वो उसको छोड़ दें आप, उसके अलावा फिर आप देख लेंगे जहां पर भी गए ये इट्स नॉट ईजी टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका, इट इज नॉट ईजी, it's not easy, it's impossible to fight against America but and
that,
the
but,
allies.
But that's the case with China as well. China ne bhi aaj tak kabhi dekhe na aggression dikhai nahi hai. Dikhai nahi hai China ne aggression kabhi bhi.
उसको पता ही नहीं जंग क्या होती है, कितना हाँ, कितनी दफा जंग की,
उसने जंग की नहीं है, हाँ, उसने जंग कभी की नहीं है,
क्योंकि वो इकोनॉमी पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, हाँ, पूरी दुनिया हाँ, भर हाँ, में इकोनॉमी पे वो है,
हाँ,
वो
तो एज अ रिजल्ट हमको स्ट्रेंथ पता नहीं है, ये वही है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जो अभी दुबई में हुआ है कि पाकिस्तानियों को खिलाते नहीं हो ना आप आईपीएल में, आपको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ है, आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीम थे फिर आप किससे हार गए, बेचारे जिनको हम कहते थे कि ओ इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया के साथ, यू नो, तो जिसको आपने टेस्ट नहीं किया ना, जिसके के बारे में आपको पता ही नहीं है, वो फिर क्या कर बैठेगा उसके बारे में,
ये सोच के अगर चाइना ने गलती की ना तो दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक इज एवर मेड, ही इज गोइंग टू गो बैक 100
नहीं नहीं, मैं मिस्टेक की बात नहीं कर रही माजिद भाई, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि कॉन्स्टेंटली चाइना को आप धमकियां दे रहे हैं, भाई आप क्यों धमकियां दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली चाइना को, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों इतना प्रोवोक कर रहे हैं,
वॉर्न कर रहे हैं उसको, धमकी आप इसको धमकी समझे उसको, ये वॉर्न कर रहे हैं,
क्यों किस चक्कर में आप वॉर्न कर रहे हैं, ताइवान उसका हिस्सा है भाई, ताइवान उसका हिस्सा है,
दैट्स व्हाट चाइना थिंक्स राइट,
हाँ चाइना थिंक्स क्या 99 का लीज था उनके पास,
दैट्स व्हाट चाइना थिंक्स राइट,
बट आई मीन why USA is thinking
these
otherwise,
these people are talking about democracy,
but why are they thinking otherwise,
ताइवान के लोग क्या चाहते हैं,
हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ताइवान के लोग क्या चाहते हैं, that's what USA, that's what China thinks, what about Kashmir then, what about Kashmir फिर,
that is हमारे हमारे वो गलती हमारे पाकिस्तान लीडर्स की है,
हाँ
not anybody else, पाकिस्तान लीडरशिप,
अब इंडिया भी तो कहते हैं ना मेरा अटूट अंग है वो,
फिर पाकिस्तान,
फिर आप कहेंगे कि
1947 में पाकिस्तान कुड हैव जस्ट ग्रैब्ड, जब फर्स्ट वॉर हुई थी उसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट ऑन कश्मीर, पाकिस्तान कुड हैव गॉट इट इजी, मगर वो बैक आउट हो गया, क्यों, लीडरशिप की वजह से, लीडरशिप हमारी लीडरशिप जो है हमेशा शुरू से लेके आज तक देखें
माजिद भाई, एक पार्टीशन प्लान था ना,
हमारी लीडरशिप बिकी हुई थी।
हाँ, लेकिन पार्टीशन प्लान के अंदर कश्मीर ने कहा था कि हम इंडिया का साथ देंगे और जब चीजें सेटल हो जाएंगी तो वी विल सी हमारा प्लेबिसाइट अप कराएंगे और हमें हमारी आजादी देंगे, जैसे कि
लियाकत अली खान साहब के बाद। आप देख लें कि कोई हमारी लीडरशिप, कोई सी भी लीडरशिप देख लें, सारी की सारी लीडरशिप बिकी हुई थी।
नहीं, नॉट अयूब खान, नॉट अयूब खान साहब, अदर्स, यस डेफिनेटली अदर्स। ठीक है, अयूब खान साहब को हम इसलिए डिफेंड नहीं करते क्योंकि वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनको एक
दूसरी न्यूज पर चले क्योंकि दिस इज गोना बी वेरी लॉन्ग टॉपिक।
हाँ, नहीं उनको आना नहीं चाहिए था, और लेकिन बहरहाल एनीवेज, तो मतलब कहने का ये है कि भाई धमकियां ना दें, क्योंकि दूसरे भी जो हैं वो भी कोई बस वो नहीं है ना, वो माजिद भाई ने खुद ही अपने मुंह से कह दिया इराक नहीं है, वो भी बहुत बड़ा जिन है, तो अभी आपको पता ही नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि उसने कभी वॉर लड़ी नहीं है, कभी वैसे उसने एग्रेशन दिखाई नहीं है, तो फिर ना करें ऐसे। अच्छा जनाब, द वायर की आज एक स्टोरी है माजिद भाई आपके लिए स्पेशली, ये मैं लेकर आई हूं है जी, ठीक है, क्योंकि आपके नीले जी जीत नहीं रहे तो मैंने कहा शायद आप जो है ये खबरें सुन के आप कुछ हो जाए। द वायर की स्टोरी है, दिस इज रिटन बाय रामा नागा, और इसकी हेडलाइन है, इज टुडेज इंडिया लॉ इज बीइंग सबवर्टेड टू क्रिएट सोशल अनरेस्ट। अच्छा, इसके अंदर जो है ये बड़ी अमेजिंग स्टोरी है, जैसे कि हम पाकिस्तान में कह रहे हैं ना कि जुडिशरी जो है वो बड़ी करप्ट हो गई है अलेजली जो है, और वो ठीक फैसले नहीं करती, वही इस आर्टिकल के अंदर भी कहने की कोशिश की है कि किसी जमाने में कोई जमाना था जब लोग, जब भी कभी मुल्क के अंदर गलत काम होता था तो लोग कहते थे जुडिशरी फैसला करेगी, जुडिशरी इंडिया के अंदर सही फैसला करेगी, क्योंकि जजेस जो हैं वो अनबायस्ड हैं, वो कभी हमेशा जो हैं वो अंडरडॉग का साथ देते हैं, वो कहते हैं कि क्या आज हम ये बात कर सकते हैं, वो कहते हैं आज हम ये बात नहीं कर सकते, चाहे ज्ञानवापी मॉस्क का किस्सा होए, चाहे विश्वनाथ टेम्पल का किस्सा होए, चाहे वो जो थी उसकी बाबरी मॉस्क की बात थी, या कि ये जो राइट्स हुए थे दिल्ली में, या जो जर्नलिस्टों के साथ किया जाता है और सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो कहते हैं आज का हिंदुस्तान अपनी जुडिशरी के बारे में ये नहीं कह सकता कि अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये जो है वो कहते हैं कि ये बहुत ही, क्योंकि वो कहते हैं जी ज्यादातर लोगों का जो भी सर्वे किया गया था तो उनसे जब पूछा गया कि आपका कोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये चीजों को मैनिपुलेट करते हैं और फेवरेबल वर्डिक्ट्स देते हैं। तो लोगों का जुडिशरी के ऊपर से हिंदुस्तान के अंदर उठ गया है जो है एतबार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जी न्यूज है, और इसके मुताबिक जो आसाम है उसके अंदर भी जो है वीकेंड के ऊपर काफी जो है वो मारामारी हुई, और वजह यह हुई कि एक बंदा जो था आसाम में उसको उठाकर ले गई थी पुलिस, उसके ऊपर उन्होंने अलज वो किए थे कि जी आपने कोई गलत काम के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर जब लोग, और फिर वहां पे अलजली लोगों ने जब वहां पे पहुंचे पुलिस स्टेशन में तो पुलिस थाने के जो लोग थे उन्होंने इनको कहा विलेजर्स को कि तुम लोग 10,000 रुपया और एक डक लेकर आओ। अब वो गरीब लोग थे, उनके पास 10,000 रुपया तो नहीं थे, वो जाके एक डक ले आए, तो पुलिस ने कहा नहीं तुम अब 10,000 रुपया फिर से अब लेकर आओ। बाय द टाइम वो आए तो उस आदमी को इतना मारा कि उसकी हालत बहुत पतली थी, जब उसको हॉस्पिटल में लेकर गए ये तो उसकी डेथ हो गई, जिसके ऊपर उन्होंने कहा इसका जो है जेल में जो है कत्ल किया गया है। तो लोगों ने क्या किया कि वो जो थाना था उसके एक हिस्से को आग लगा दी, वो जब आग लगाई तो इन्होंने क्या किया, उस आदमी जो था उसका नाम था सफीकुल इस्लाम, मुसलमान था वो, तो इन्होंने क्या किया जी 40 घर ढा दिए वहां पे, म्यूनिसिपल जो वहां की यूपी की जो सॉरी आसाम की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने घर ढाए, और अलेजली मीडिया ने भी और बाकी जो इंडिपेंडेंट मीडिया को दो चार जो रह गया वो कहता है जी ज्यादातर यहां पे मुसलमानों के घर थे जिनको के जो है ये गिराया गया है, और वो कहते हैं जी कि ये चलता ही जा रहा है सिलसिला, पहले दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में इन्होंने मुसलमानों के घर गिराए हैं, फिर शाहीन बाग में गिराए हैं, फिर जो मध्य प्रदेश में खारगोन का एरिया है वहां पर गिराए हैं, गुजरात के आनंद में गिराए हैं, और अब यहां पे आसाम में गिराए हैं। तो मोस्टली ये जो है मुसलमानों के घर होते हैं जिनको गिराया जाता है, जिसकी की वजह से लोगों में जो है आज बहुत ही ज्यादा गम और गुस्सा है। द प्रिंट की एक स्टोरी है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऐश्वर्या पंडित, और ऐश्वर्या पंडित की जो ये स्टोरी है इसका हेडलाइन है कांग्रेस हैज कमिटेड सुइसाइड व्हाई द नेहरू सेक्युलर आइडियाज एंगर्ड यूपी वर्कर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। अच्छा जी, ये बड़ी एक हिस्टोरिकल आज का आर्टिकल है, और इसमें इन्होंने ये देखने की कोशिश की है जी कि हिंदुस्तान का पार्टीशन क्यों हुआ, और उसका पूरे का पूरा ब्लेम इन्होंने नेहरू को और कांग्रेस पार्टी को दिया है। वो कहते हैं कि यूपी जैसे जो इलाके हैं यानी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके, वहां पे लोग कांग्रेस से इतना ज्यादा डिसहार्टन होकर क्यों बीजेपी को शामिल हो रहे हैं और क्यों इसको छोड़ते जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उस जमाने में एक आदमी था July 10, 1947 में इनका कांग्रेस का वर्कर आर एस विद्यार्थी, उसने एक लेटर लिखा था मीरठ से और उसमें यह लेटर जो था इन्होंने भेजा था आचार्य कृपलानी साहब को और उनको कहा था कि तुम ये जो मुस्लिम लीग है ये एक इंतहाई कॉम्युनल और घटिया सी पार्टी है, तुम कांग्रेस जैसी शक्तिशाली पार्टी हो, तुम इस घटिया पार्टी के आगे क्यों घुटने टेक रहे हो और तुम जिना के प्रेशर के अंदर क्यों आ रहे हो, तो तुम लोगों ने क्यों पार्टीशन के लिए जो है वो हां कर दी है। तो वो कहते हैं उस दिन से ये जो हिंदू थे इनको लगता था कि कांग्रेस एंटी हिंदू है और ये मुसलमानों की तरफ इनका झुकाव है, इसीलिए इन्होंने पार्टीशन मांगा, क्योंकि उस वक्त के जो खास तौर पे यूपी के हिंदू थे वो कहते थे कि ये भारत माता जो है इसको इकट्ठा रहने दो, इसका पार्टीशन या बंटवारा मत करो। और ये बंटवारा इसलिए हुआ कि नेहरू और कांग्रेस जो थे इन्होंने बहुत ज्यादा मोहब्बत और लीनियंसी दिखाई इनको, जिना साहब को और जो है मुस्लिम लीग को, उसकी वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ। उन लोगों की वो जलन अभी तक गई नहीं है, तो इसलिए लोग जो हैं अब कांग्रेस को छोड़ छोड़ के बहुत सारे अब वो सोच रहे हैं, दे आर रिफ्लेक्टिंग अपॉन दोज इवेंट्स इन 1947 और वो कह रहे हैं ये पार्टी अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, तो ये छोड़ छोड़ के जो है ये सारे अब जो बीजेपी या इधर उधर जा रहे हैं और तुम लोग जो है बिलावजह एतराज कर रहे हो, तुम लोग अपनी पॉलिसीज देखो कि कितनी एंटी हिंदू हैं, तो इसलिए जो है ये है। पाकिस्तान के अंदर जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपना बेंचमार्क रेट जो है 150 बेसिस पॉइंट्स पे बढ़ा दिया है और उसकी वजह उन्होंने कहा जी कि बेतहाशा जो इधर इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है जी कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसको IMF ने जो अपना नया प्लान दिया है जिसके के तहत ये उससे पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको यहां पे रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सब्सिडीज वापस लेनी पड़ेंगी, जिसका क्या मतलब है कि चीजें जो हैं वो बेतहाशा और एक्सपेंसिव होंगी क्योंकि अब ये नई डील है, जो पुरानी गवर्नमेंट की IMF के साथ डील थी वो और डील थी, तो ये चीजें ऊपर जाएंगी। इसमें आज क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा फिर से क्रिटिसाइज किया है, जो यहां पर पाकिस्तान में भी जो दो चार इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रह गए हैं बाकी तो माशाला से अलेजली सारे बिक गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान उधर गया था ये 30% लेस पे कीपिंग इन व्यू द वर्ल्ड वो जो है प्राइसेस जो हैं उनसे डील करने रशिया के ऊपर गया था, और उन्होंने आज कहा है कि यही एग्जैक्टली डील जो कि वहां पे इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन उन्होंने जो अनाउंस किया है कि अब हम बहुत ज्यादा सस्ता कर रहे हैं ऑयल एंड गैस, उसकी वजह यही है कि वो रशिया से ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के जो हाई प्राइसेस हैं उनको बीट करता है इंटरनेशनल जो रशिया के प्राइसेस हैं। तो अगर पाकिस्तान ने भी ये डील की होती और आपने ये गवर्नमेंट ना हटाई होती तो पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त ऑयल एंड गैस और ये चीजें बहुत सस्ती होती एंड एज अ रिजल्ट खाने पीने की और दूसरी चीजें भी सस्ती होती एंड एज अ रिजल्ट जो आपने अभी अनाउंसमेंट किया है कि कोई लग्जरी गुड्स अब पाकिस्तान में नहीं आएंगे, वो आपको ये कदम ना उठाने पड़ते। तो ये जी आज जो है इसके ऊपर पाकिस्तान में काफी मचा है शोर। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने आज वार्न किया है, जैसे अमेरिका ने चाइना को वार्न किया ना, वैसे ही आज फवाद चौधरी साहब ने जो है ये वार्न किया है इनको सनाउल्ला साहब को जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, कि खबरदार ये आजादी मार्च को आपने रोकने की कोशिश की और अगर आपने ये आजादी मार्च को रोकने की कोशिश की तो इसके बड़े बैड प्रिपरकॉशंस आएंगे। ये इस्लामाबाद के अंदर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें इन्होंने कहा कि हमारा जो है अनाउंस कर दिया हमारे लीडर ने कि हम इस्लामाबाद की तरफ जो है 25 मई को आएंगे और ये केपी से चलेगा और जो है ये लाहौर से होता हुआ हुआ यहां पे श्रीनगर हाईवे के ऊपर आएगा और यहां पे जो है वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब जो है वो मुलाकातें करेंगे। वो कहते हैं जी कि कराची के अंदर इसलिए हम ये इस चीज की कॉल नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कराची में डिसरप्शन पैदा होए, वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है वो डेली वेजेस के जो लोग हैं उन वो फिर अफेक्ट होते हैं, तो वहां पे हम चाहते हैं कि वहां पे जो PTI के वर्कर्स हैं वो खुद ही अपनी वहां पे सिचुएशन कराची में देखते हुए जो है अपने डिसीजंस ले सकते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट जो है ये जब बयान आया है इनका तो कोएलिशन गवर्नमेंट ने आज जरदारी साहब के साथ मुलाकातें की हैं और उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए हम जो है अपनी टर्म पूरी करेंगे और उन्होंने कहा जी कि अब हमको मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे, चीजें महंगी होंगी, तो फिर पायान फिर उन्होंने हटाया क्यों, तो आप तो आए इस मुद्दे पे थे कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, तो अगर आपने पहले से भी ज्यादा महंगाई करनी है तो फिर आपने उसकी गवर्नमेंट को क्यों उठाया। बहरहाल जी, वो कहते हैं जी कि अब आईएमएफ ने हमको कहा है कि अगर आपको बैंकरप्ट नहीं होना है तो 6 बिलियन US डॉलर का जो आपको लोन प्रोग्राम चाहिए है उसमें आपको हर चीज पे, खासतौर पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर से सब्सिडीज हटानी पड़ेंगी, जिसका कि मतलब है कि इन्फ्लेशन में और जो है राइज आएगा। तो बहरहाल हम ये मुश्किल डिसीजन लेने को तैयार हैं। कोई हाल नहीं ना था वैसे, कोई हाल नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो कि आपको पता ही है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने आज कहा है कि एक हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और एन कॉन्फ्रेंस के बीच में किसी का एक फोन आया था और वो इमरान खान साहब से बात करना चाहता था और मैंने उसको कहा कि खान साहब आप बात कर लो, तो उन्होंने कहा कि ये वो मौका नहीं है, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे, ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अब जर्नलिस्ट इनसे पूछ रहे हैं कि वो फोन कॉल क्या थी और वो क्या आपको कह रहे थे। वो कहते हैं जी मैं वो जो कौन आदमी था जिसका मुझे फोन कॉल आया था उसका तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बहरहाल मुद्दा यही था कि इस बंदे को जो है हटाएं, आप इसको हटाएं। अब वो कौन है वो नहीं ये बता रहे, ये नहीं बता रहे शाह महमूद कुरैशी साहब कि उस इतने क्रूशल मौके पे फोन कॉल किसकी आई थी, वो नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स जो एहसन इकबाल साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं ये, उनका आज कहना है कि इमरान खान नियाजी जो है बिला वजह लोगों को पागल बना रहा है, इसकी बातें आप ना सुने, ये खामखाई मुल्क के अंदर केओस पैदा करने की कोशिश कर रहा है और ये पोलराइजेशन कर रहा है और ये हेट्रेड बढ़ाता जा रहा है। इमरान खान नियाजी की जो सियासत है वो अनएक्सेप्टेबल है इस कंट्री के अंदर। ये जलसों में बार बार कह रहा है तुम स्लेवरी की तरफ जा रहे हो, स्लेवरी की तरफ जा रहे हैं, यूथ का ये ब्रेन वॉश कर रहा है, इसका अपना खुद का पोलिटिकल एजेंडा है और ये मुल्क के अंदर एनार्की फैला रहा है, तो आप इसकी बात ना सुने और ये जो है इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक लीडर्स के बीच में जो है गलतियां बना रहे हैं। मगर पायन आपके तो अपने लीडर ने मिलिट्री को गालियां दी थी, हैं नवाज शरीफ साहब की स्पीच याद है आपको कि नहीं याद है, कि आपको याद कराएं, यहां पे क्लिप चलाएं एक माजिद भाई, कल चलाएंगे वो क्लिप, ठीक है जी। तो आपके तो अपने उन्होंने कहा कि जी ये जो आर्मी है ये बड़ा मुल्क में बिगाड़ पैदा कर रही है, तो फिर इमरान खान ने अजी कैसे बार लेनी हुई आपकी मर्जी, तो इन्होंने ये आज कहा। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सीएनएन की बेकी एंडरसन को, जैसे कि कुछ अरसा पहले जो है बेकी एंडरसन ने बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू लिया था, आज उन्होंने कल यानी कि उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया है। इसमें इन्होंने एक दफा फिर से इनसे पूछा है कि भई आपको कैसे ये पता है कि आप की गवर्नमेंट को जो है वो हटाया है यूएस ने, और तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इन्होंने कहा बेकी एंडरसन को कि देखें जी डोनाल्ड लू जो है वो अमेरिका में ही बैठा हुआ है और किसी चीज के लिए अगर उसको ना भी सैक किया जाए, बैड मैनर्स के लिए और शीयर एरोगेंस के लिए उसको सैक करना चाहिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए हाउ डेयर ही के 220 मिलियन लोगों का जो मुल्क है उसका जो अंबेसडर है असद मजीद उसको बुला के इसने कहा कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया तो बड़े ब्लेटेंट इंटरफेरेंस आपको बड़े बैड आपको कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे, तो दिस इज ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन अ सॉवरन कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, और ये जो है आप कैसे किसी को इस तरह से बुला के और इतनी एरोगेंटली बात कर सकते हैं, और आपने उसको यह भी मैसेज दिया था कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे पाकिस्तान का अगर तुमने अपना प्राइम मिनिस्टर हटा दिया। तो उसने पूछा, फिर उसने कहा कि तुम्हारे ताल्लुकात क्यों इतने अमेरिका से खिलाफ हैं से खराब हैं। तो इसने कहा जी मुझे तो खुद समझ में नहीं आई क्योंकि ट्रंप साहब के साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे, अचानक से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई, उसमें अफगानिस्तान का किस्सा आ गया, इन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया, इन्होंने पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट के साथ एंगेज नहीं किया, हमें तो खुद इस चीज की अभी तक जो है वो समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी कि तुम्हारे जो प्लान्स थे उसके असल में लोग खिलाफ हो गए थे। उन्होंने कहा जी प्लान्स के क्या खिलाफ हो गए थे, हम तो कौम के लिए ही जो है सही फैसला कर रहे थे, अगर हमने रशिया के साथ इस वक्त डील की होती तो हमारे तो मुल्क में ऑयल एंड गैस बड़ा सस्ता हो गया होगा, होता जैसे कि इंडिया में हो गया। तो उसने पूछा कि तुम्हारा यह मूव गलत नहीं था तुम रशिया गए। उन्होंने कहा जी ये सारी डिप्लोमेटिक चीजें तुम्हें भी पता है कि ये एक दिन पहले नहीं होती हैं प्लान, ये कई महीने पहले प्लान होती हैं। और तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है तुमने ये नहीं सोचा कि तुम उधर जाके तुमने गलत फैसला किया है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर तो उसने इन्वेड कर लिया होता यूक्रेन को तो अगर मैं जाता तो फिर मेरा फैसला गलत होता, लेकिन जिस वक्त मैं गया तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि रशिया इन्वेड कर रहा है करेगा इसको यूक्रेन को, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा फैसला गलत था, क्योंकि मेरी मिलिट्री जो थी उसको हार्डवेयर चाहिए था सस्ता जो कि रशिया हमें दे रहा था, और हमको ऑयल एंड गैस चाहिए थी, फिर ऑयल गैस और गैस की पाइपलाइन हम इनके साथ जो है उसकी बात कर रहे हैं चीप ऑयल एंड गैस के लिए फॉर द नेक्स्ट यू नो जनरेशन, तो हमने क्या गलत फैसला किया, कोई हमारा गलत फैसला नहीं था। तो ये इस तरह से। अच्छा फिर उन्होंने कहा जी के तुम कैसे ये अलेज कर रहे हो कि तुम्हारी जो गवर्नमेंट है उसको यूएस ने हटाया. उसने कहा जी अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है कि पीटीआई के जो बैक बेंचर्स थे उनके साथ मुलाकातें ये कर रहे थे, क्योंकि वो तो बैक बेंचर्स थे, वो कोई काम भी नहीं कर रहे थे, गलत कामों में भी मसरूफ थे. तो हम तो उनको ऑलरेडी कह रहे थे कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. तो अमेरिकन एम्बेसी का इस्लामाबाद में क्या काम बनता था कि पीटीआई के बैक बेंचर्स के साथ जो है वो दोस्तियां बनाता, उनको बुलाता और उनको वो कहते हैं जी कि इन्होंने ऑफर किया $1 million ईच. तो क्यों किया इन्होंने फिर ऐसे? तो ये इंटरफेरेंस नहीं है तो फिर और क्या है? तो ये काफी जबरदस्त इंटरव्यू था. इसके ऊपर काफी आज जो है थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स इसकी रीट्वीट्स हुई हैं और इसको जो है शेयर किया गया है. तो बहुत लंबा इंटरव्यू था, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सीएनएन पे देख सकते हैं. अच्छा जनाब, ये सारी जो बहुत ही पाकिस्तान की दिल दुखा देने वाली खबरें बहुत थी, तो मैंने कहा दो अच्छी खबरें भी ढूंढ लो. है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर फिर लोगों को हाई हो जाता है जी. अच्छा, दो बहुत अच्छी अब आपको हम खबरें बता रहे हैं. टाइम मैगजीन ने अपने 100 most influential जो ज्यूरिस्ट्स हैं उनकी जो है लिस्ट छापी है और उसके अंदर पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल हैं उसके अंदर भी 100 most influential पीपल ऑफ 2022 के अंदर इनका नाम है. और आज एतजाज एसन साहब जो है उन्होंने आज इनकी बड़ी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि ये हाईली रिस्पेक्टेड है ये आदमी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा इसका हाई जो है वो मेटल है और ज्यूरिसडिक्शन और ज्यूरिसप्रूडेंस और इसके अंदर इसकी बड़ी वो है. तो बहरहाल जी हम मुबारकबाद देते हैं, इनका नाम आया है. इसके अलावा जनाब एक और अच्छी खबर जो पाकिस्तान की है, प्रोफेसर जुल्फकार भुट्टा जो आगा खान यूनिवर्सिटी में कराची में पढ़ाते हैं, 100 medical scientists जो हैं उनके अंदर जी इनका नाम आया है. और इसको जो है research.com ने आज पब्लिश किया है और उन्होंने दुनिया के टॉप साइंटिस्ट जो है मेडिकल साइंटिस्ट उनकी रिसर्च, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी पब्लिकेशंस, उनके जो काम के ऊपर साइटेशंस दी जाती हैं वो टॉप जो 100 scientists हैं उनके अंदर प्रोफेसर जुल्फकार भुट्टा ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी जो हैं उनका भी नाम है. इन्होंने एग्जामिन किया था 166,000 से ज्यादा साइंटिस्ट और स्कॉलर्स जो थे उनके प्रोफाइल्स और इनको किया गया था मेडिसिन के अंदर सारों को उसमें शॉर्टलिस्ट करते करते फिर जब ये 100 में आए तो डॉक्टर भुट्टा का भी उसमें नाम आया. डॉक्टर भुट्टा जो है फाउंडिंग डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के, इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट एट आगा खान यूनिवर्सिटी, को डायरेक्टर ऑफ सिक किड्स सेंटर्स फॉर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ, रॉबर्ट हॉर्डिंग चेयर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ एंड पॉलिसी, सीनियर साइंटिस्ट इन चाइल्ड हेल्थ इवेल्युएटिव साइंसेज प्रोग्राम एट हॉस्पिटल फॉर सिक किड्स इन टोरंटो. तो ये सारे जी इनके डेजिग्नेशंस हैं. तो जनाब ये एक जो है और अच्छी खबर जो है पाकिस्तान से आई है. अच्छा जी, बड़ा बॉलीवुड में तो रोज ही कोई ना कोई कट्टा खुल रहा है जी. ये अब बड़ी ये जो है नई नई बातें आ रही हैं बॉलीवुड में.
किसका कट्टा खुल गया?
आज कट्टा ये खुला जी कि अक्षय कुमार के साथ एक जो है वही जो मिस वर्ल्ड हुई थी कुछ अर्सा पहले मानुषी चिल्लर, वो इनकी जो आने वाली फिल्म है उसमें वो काम कर रही है. तो इन्होंने जी बड़ा अपने नीज के ऊपर जो है वो झुक के और जो है ये हम वी आर थैंकफुल टू पिंक विला उनकी हमने ये तस्वीर ली है, बड़ी प्यारी इन्होंने की थी. तो कर्टसी टू देम वी आर थैंकफुल टू देम. उन्होंने जी आज अक्षय कुमार साहब ने ये देखें पैरों पे झुक के उनका हाथ पकड़ के उसके हाथ को चूम रहे थे और ये बड़ा प्यारा येलो सा लहंगा पहन के जो है वो खड़ी हुई थी. अच्छा जी, अब लोगों ने कहा है ट्विटर पे कि पायान ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, आपकी बेगम ट्विंकल खन्ना इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगी. तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ट्विंकल खन्ना इस पे आप अपना जवाब दो और हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम कोई फनी वीडियो इसके ऊपर करोगी या व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर हस्बैंड. कहीं ऐसा तो नहीं है वो मिस वर्ल्ड को देख के जो है वो उनका दिल उनकी उनकी कामें टांग गई है उनकी कामें टांग गई है जी. तो ये जनाब वीडियो जब से आई है तो ये बहुत ही ज्यादा स्यापे पा रही है. एंड जनाब अबरारुल हक साहब जो हैं उनका जो अभी बता रही थी अरफाबाजी आपको कि जी वो नच पंजाब उन्होंने चोरी किया है. करण जौहर साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ इनका एक गाना नहीं दिया और भी जो हैं वो जो आपको पता ही है उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनाई थी उसमें नाजिया हसन का गाना डिस्को दीवाने जो था वो भी इन्होंने लिया था. इसके अलावा भी इंडियंस जो है वो अभी थोड़े दिन पहले भी हमने आपको खबर सुनाई थी हदीका कियानी का एज इज वो भी जो है वो कानिका जो है उन्होंने वो लिया हुआ था गाना उसका बूहे बारियां हदीका कियानी का वही लिरिक्स वही लय वही सब कुछ बस सिर्फ कम कपड़े पहन के और झूले पे उन्होंने बैठ के नाच नाच के वो गाना गाया है. सिर्फ ये एक डिफरेंस है उसके अंदर. और इससे पहले भी आपको पता है कि मेहदी हसन साहब के भी बड़े गाने जो हैं वो लिए गए थे और इस तरह. तो अब इसके ऊपर जो है इन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है उसके कॉपीराइट हैं, एब्रार उसको मानते नहीं है। एब्रार कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा अग्रीमेंट या कॉपीराइट कुछ है आप मुझे दिखाओ, अगर नहीं दिखाओगे तो इस दफा मैं आपके ऊपर जो है वो कॉपीराइट का वो करूंगा, क्योंकि आप इससे पहले भी आप लोग जो है यानी हिंदुस्तान में लोग मेरे पांच गाने इससे पहले भी, तो ये छठा गाना है। ये जो फिल्म है वही जो आपको अरफा बाजी बता रहे थे कि जुग जुग जियो, इसके अंदर आपको क्लिप के अंदर नजर आ रहे हैं अनिल कपूर, नीतू सिंह, कियारा एडवाणी, वरुण धवन और मनीष पॉल वो डांस कर रहे हैं इस गाने के ऊपर, तो वो आपको ये आने वाली फिल्म जो है करण जौहर की उसमें नजर आएंगे। एंड जनाब एक और अच्छी खबर हमारी, जो कनेडियन जो है बियांका एंड्रूस्कू वो जो है अब जीती हैं यहां पे, और उन्होंने बेल्जियम की जो सलीन बोनावेंचर को जो है वो हराया है 3 सेट्स के अंदर, और फर्स्ट राउंड जो फ्रेंच ओपन का है वो इन्होंने जीत लिया है। और जनाब ये एक माजिद भाई के तो नीले जो किसी काम के नहीं है, लेकिन बहरहाल इसने जो है नीली टी शर्ट पहन के बड़ा कमाल दिखाया है, तो भाई शुक्र है कोई तो कनेडा से अच्छी खबर आई है। एंड जनाब मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी ने बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की, अपना टाइटल डिफेंड किया ओवर द वीकेंड। ओहो माजिद भाई आपने देखा है, आप नीले जियों को ट्रानो एफसी को भूल गए होंगे, ऐसी गेम थी। प्रीमियर लीग का जो इनका टाइटल था इन्होंने बीट किया एस्टन विला को 3-2 से, हालांकि इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल हार रहे थे, लेकिन फिर ये वापस आया और ये जीते और इन्होंने अपना 6th प्रीमियर लीग टाइटल जो है 11 सीजन में वो जीता और उसको जो है डिफेंड भी किया। एंड राफेल नडाल जो हैं वो भी बड़े आगे आगे चल रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, सेकंड राउंड में फ्रेंच ओपन के वो पहुंच चुके हैं और अब जो हैं वो उनके बारे में कहा जा रहा है, इन्होंने वैसे हराया था ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉमसन को 6-2 6-2 6-2 से, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी 106 ग्रैंड स्लैम इन्होंने विन किए हैं और अब जो हैं ये इनके कुछ ही मेजर्स रह गए हैं विन करने के लिए, ये सेकंड इन ऑल टाइम लिस्ट ऑफ 105 विन्स इन विमिल्डन की उसके लिस्ट के अंदर हैं, और जिमी कोनर्स को बल्कि इन्होंने पीछे छोड़ दिया, जिमी कोनर्स जो हैं अब 33rd नंबर पे जो हैं वो चले गए हैं, तो ये बहुत ही आगे आगे जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हैं,
स्टिल यंग
हैं जी, तो बहुत आगे जा रहे हैं ये तो ज्यादा ही आगे चले जाएंगे इनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एंड जनाब आज एक ऐसी खबर आई क्रिकेट की दुनिया से कि जिसके की वजह से लोगों की आंखें खुल गई और वो बात ये थी कि सलमान बट जो है पाकिस्तान के एक्स कैप्टन क्रिकेट टीम के, उनको सिंगापुर क्रिकेट जो बोर्ड है उसने इनको हायर कर लिया है टू बी देयर कोच। तो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन की जब ये आई खबर कि ही विल ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस टू आवर साइड, तो ये 37 ईयर ओल्ड जो पाकिस्तान के एक्स टेस्ट कैप्टन हैं उनके बारे में बड़ी खबरें सामने आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा वैसे तो इनका फर्स्ट टेस्ट होगा ये जो T20 जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो रहा है सिंगापुर का जुलाई में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो, लेकिन इनके ऊपर तो बड़े एलिगेशंस थे स्पर्ट फिक्सिंग के, ये जो थे ही वॉज पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम फ्रॉम 2003 to 2010, इसके अलावा जब ये इंग्लैंड का टूर कर रहे थे तो इन्होंने अपने जो बॉलर्स थे मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ उनको शायद कहा था अलेजली कहा था कि तुमने नो बॉल्स करानी है और उसके लिए इन्होंने पैसे लिए थे, ये सारा कटा खुल गया था फिर जो है इनके ऊपर 5 ईयर्स का बैन लग गया था और इनको यूके की कोर्ट में जेल किया गया था। तो व्हाट इज दिस, ये सिंगापुर ने कैसे इनको लिया है? बहरहाल जी सिंगापुर का इनके साथ प्यार है, आपको क्या तकलीफ है? हैं जी जाने दो बेचारे बच्चे को, खेलने दो, अभी उम्र ही क्या है इसकी, सिर्फ 37
इयर्स, ओनली 37, ही वाज अ वेरी ही वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम।
या बस एक गलत काम जो होता है ना माजिद भाई बहुत आपके उसको डिरेल कर देता है। एंड जनाब शादाब खान और मोहम्मद नवाज जो हैं अब ये जो ओडीआई शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसमें ये पाकिस्तान की T20 का हिस्सा होंगे और शादाब की एज जो है 23 है, नवाज 28, लेकिन फिर भी इनको बहुत सारी इंजरीज आ गई थी तो लग रहा था कि जैसे नहीं खेल सकेंगे तो अब ये ओडीआई में खेलेंगे। वैसे देवर पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 लेकिन ओडीआई में इनका जरा कुछ शक नजर आ रहा था, लेकिन अब ये नजर आएंगी। तो ये 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज है ये पिंडी से शुरू में शुरू होगी June 8 to June 8, 10 and 12। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट 3-day इंटेंस प्रैक्टिस जो कि चल रही थी कराची के साउथ एंड क्लब के अंदर पाकिस्तानी विमेन और श्रीलंकन लेडीज के बीच में, क्रिकेटर्स के बीच में, तो ये अब ट्रेनिंग खत्म हो गई है और कल से इनके बीच में जो है वो 3 T20 जो खेले जाएंगे उसका फर्स्ट मैच होगा। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की टीम को लीड करेंगी, चमारी अथा पथरू जो है श्रीलंका की टीम को लीड करेंगी और दोनों ही जो हैं वो बड़े देख रहे हैं कि हम कौन जीतेगा। हालांकि कराची का वेदर बेइंतहा हॉट एंड ह्यूमिड है इसीलिए तकरीबन 2 बजे के करीब मैच शुरू होंगे। यस, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं साहिली समुन्दर से कराची में,
नहीं तो इसलिए
ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो लेकिन वो जब शाम की तरफ जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी हीट कम हो जाती है वो कह रहे हैं। ठीक है जी, बहरहाल जी कुड़िया का रंग तो हो गया काला सिया इस गेम दे बाद, बहरहाल की हो सकता है, खेडना तो है ना जी, फिर क्रिकेट वो भी
यू कैन मिस इट।
यस,
ये थी हमारी आज की खबरें।
वही वही मेरी तो खबरें हो गई हैं, फिर अपनी सुनाओ ना, वो जो है आपके नीले जेत ट्रैनो एफ सी ते वो दूसरे तीसरे वो क्या कर रहे हैं?
वो तो सारे चले गए ना अपने घरों।
अच्छा, वो घरों को चले गए। अच्छा, रेस्ट कर रहे हैं,
नीले जय रह गए।
अच्छा अच्छा,
मैंने आपको क्या कहा था, आपने लिख के लगाया हुआ है ना, दिस इज द ईयर फॉर नीले जय। हालांकि बड़ा खराब खेल रहे हैं वो।
ओके ओके ओके,
मगर फिर भी
हम जीतेंगे,
हम जीतेंगे भाई, जीतेंगे
खेल के हारेंगे।
दे आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल,
नहीं खेल के हारेंगे, वैसे नहीं हमने माना।
नहीं 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 नहीं, वो जो है वो बाकी के तो रैप्टर्स तो गए अपने घर, अपने
रैप्टरें चली गई हमारी,
और लीव्स चले गए,
सूखे पत्तों की तरह,
सूखे पत्तों की तरह उड़ गए वो भी, तो अब एक ही रह गए, तो कुछ हो ना हो उन्हीं को फॉलो करना है।
चलो कोई मज भाई, ये जो टेनिस स्टार है ना हमारी, उस पर भी जरा थोड़ी सी आप गौर कर लो, थोड़ा नजरें रख लो इस पर, शायद आपका दिल खुश हो जाए।
जब ये फर्स्ट टाइम आई थी ना प्रोफेशनल बन के, तो यूएस ओपन जीता इसने, यूएस ओपन जब जीता तो ये एवरीबडी हैड अ वेरी हाई होप फॉर, मगर इंजरीज ने इसका साथ नहीं दिया।
यस,
यू नो शी हैज बीन इंजर्ड फॉर वेरी सो मेनी टाइम्स, तो अब ये फर्स्ट टाइम जब इसमें फ्रेंच ओपन में शी इज वन, हालांकि फ्रेंच ओपन जो है क्ले का वो है,
कोर्ट है,
तो देखें क्या होता है,
क्या होता है। बड़ी फिजीक है इस लड़की की ना,
बहुत फिजीक,
बड़ी जबरदस्त किस्म की।
रिचमंड हिल,
ओह यस आई नो,
वही की है हमारी, रिचमंड हिल की है ये।
यस यस यस,
ठीक है साहब, तो 6:40 और 6:41 हो गए साहब, कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे, आरफ जी हमारे साथ होंगी। शादी जी थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच भाई। 7 बजे फिर हम बात करेंगे हरदीप से,
हरदीप से
आज
7 बजे इंशाल्लाह, 7 बजे।
थैंक यू मच भाई,
चले। अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान, लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100, कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसीलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। आप मुझसे 9055130012 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या kanemsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन द हार्ट मिसिसागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट, खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन, फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive Commercial Intersection, Grill and Chick, 9054560500. Grill and Chick.
गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522, 302-2522। Valia Traffic Legal Services se janab RS Valia.
Careless driving,
speeding ya phir accident,
fail to remain stop at the scene,
red lights ya phir seat belts,
permit drive without insurance,
racing, student driving ya phir caught while using phone,
speeding.
RS Valia aapki ticket se nijat dilwayenge aur aapke points bhi save karenge. 9054542112 सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
Pizzas Pros and Wings, 6th location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh or mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa, pinza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8388, 905-789-8388,
www.pizzapros.ca. Akal Truck & Loom,
Tade Truck Badshah di quality service, repair, oil change, wash te maintenance.
Ek aur khush khabri,
North American, Chinese te Korean nave te istemal shuda tires with full warranty.
Akal Truck & Loop, 1776 Mearside Drive, 905-565-1100, 905-565-1100.
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे, और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साज और आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा।
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577।
जी सारे नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड 6:47 और 17 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और बात करता चलूं मैं सिटी साउथ पिज्जा की। सिटी साउथ पिज्जा बर्लिंगटन में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। साहब 4265 थॉमस ऑल्टन बुलेवार्ड इन बर्लिंगटन, 4265 थॉमस ऑल्टन बुलेवार्ड इन बर्लिंगटन। ये कहते हैं कि सिटी साउथ पिज्जा अपने यूनिक ट्रेडिशनल और देसी स्टाइल पिज्जा के लिए जाना जाता है। आप यकीनन हमारे देसी स्टाइल पिज्जा को पसंद करेंगे। हम हलाल टॉपिंग्स के लिए जाने जाते हैं। ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर हमारी स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाएं। 4 टॉपिंग लार्ज पिज्जा स्पेशल है 1799 का, और एक लार्ज पिज्जा विद 1 टॉपिंग 1199 का मिलेगा आपको। और इसके अलावा लोड्स ऑफ फैमिली कॉम्बोज टू चूज फ्रॉम। कहां जाना है आपने? आपने जाना है 4265 थॉमस ऑल्टन बुलेवार्ड इन बर्लिंगटन, और आप इनकी वेबसाइट पर चले जाएं www.citysouthpizza.ca। अगर आपने कॉल करना हो तो 905-319-1113 इनका फोन नंबर है। इसके साथ साथ मॉर्गेज डिलीजेंट के जनाब मुकेश चौहान कहते हैं कि मॉर्गेज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, प्राइवेट लैंडिंग, लास्ट मिनट क्लोजिंग, डेथ कंसोलिडेशन, इसके साथ साथ इमरजेंसी फंड्स चाहिए हो तो आप मुकेश चौहान से राब्ता कायम करें। 647-512-7000 इनका फोन नंबर है। چلیے صاحب انہی کی تعاون سے ایک خوبصورت گیت کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو میں, اور گیت بہت ہی خوبصورت گیت ہے لتا منگیشکر اینڈ مکیش جی کی آواز میں. سماعت فرمائیے یہ خوبصورت سانگ.
बादल है ये कुछ पल का छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौतों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 to 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉर्न। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS Lawyers नूं कॉल करो, 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो, 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
ट्रकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने का शानदार मौका मेज कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं। ट्रक डिस्पैचर एंड फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज, इस ट्रेनिंग कोर्स के जरिए आप बन सकते हैं ट्रक डिस्पैचर, फ्रेट ब्रोकर या शुरू करें अपनी ट्रकिंग कंपनी। अगर आप ट्रकिंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हम आपको कंपनी को सेटल करना, परमिट्स और तमाम दूसरी चीजों का बंदोबस्त करने में मदद करते हैं। आज ही कॉन्टैक्ट करें मेज कंसल्टेंसी, 905-826-2919, 905-826-2919।
शाह इंटरटेनमेंट के नासिर शाह लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया का मकबूल तरीन शो खबर हार आपके अपने शहर ब्रैम्पटन में, June 26 शाम 5 बजे एट कैनेडियन कन्वेंशन सेंटर ब्रैम्पटन में। खबर हार आफ्ताब इकबाल अपनी पूरी टीम के साथ आपके शहर ब्रैम्पटन में। टिकट्स और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-526-6800, 416-526-6800।
हेलो, मैं हरदीप गरेवाल, थोड़ा ब्रैम्पटन ईस्ट तो पीसी पार्टी दा एमपीपी कैंडिडेट। 4 साल पहला तुसी प्रीमियर डग फोर्ड अते पीसी पार्टी नू मौका दिता, रिजल्ट थोड़े सामने है। ब्रैम्पटन दे लई न्यू सेकंड हॉस्पिटल, एक नमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, सीनियर्स दे लई नमे लॉन्ग टर्म केयर बेड्स, बिल्डिंग हाईवे 413। 2 जून नू अपनी कीमती वोट पाके मेनू हरदीप गरेवाल नू कामयाब करो, ते आओ अपा रल के ब्रैम्पटन नू अगे वधाईए।
ऑथराइज्ड बाय द हरदीप गरेवाल कैंपेन।
हर किसी टीम फॉर एंटरटेनमेंट एंड ट्रांस 99 लॉजिस्टिक्स प्रेजेंट अरिजीत सिंह लाइव इन कॉन्सर्ट। सैटरडे June 11th एट द फर्स्ट ऑन्टेरियो सेंटर हैमिल्टन।
एक बार सही, एक
in association with Trust Expert, Autobahn, Roadlink, RPD 24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit Ticketmaster.ca or call 905-793-1234. Team 4 Entertainment presents Arijit Singh live in concert.